आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में बिल्कुल आखिर में आकर जावेद साहब ने ये फरमाया था कि इंसान जो है उसके सामने पहाड़ों के सामने जो है वो ये पेश किया गया कि वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं या नहीं, लेकिन सबने इनकार किया और इंसान ने बढ़कर उसे जो है वो हासिल किया था और इंसान ने अपने आप को पेश किया था। आज हम उसी से बात का आगाज़ करते हैं कि इंसान ने जो अपने आप को पेश किया था इस हवाले से भी, और दूसरी बात जावेद साहब ने ये फरमाया था कि इब्तिदा में तमाम इंसानों को जमा करके उनसे पूछा गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और सब ने इकरार किया था कि हाँ बेशक आप ही हमारे रब हैं। वो इकरारनामा या वो जो सवालनामा हमारे सामने था वो तो आज हमें याद भी नहीं है। तो अगर जब याद ही नहीं है वो चीज़, तो फिर उसके मुताबिक हम अमल करने के पाबंद क्यों हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब भी, और हमारे स्टूडियो में शुरका भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
जावेद साहब, पिछले प्रोग्राम में आपने ये बात की थी कि हमने वहाँ पर एक जगह अल्लाह ताला ने हम सबको जमा किया था और हमसे ये पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, और हमने इकरार किया था। अब वो वाला जो उस वक्त का जो इज्तिमा था, वो इज्तिमा हमारे जहनों में नहीं है, हम में से कोई उसे याद नहीं है किसी को भी। उस बुनियाद पर फिर हम जाहिर है हमारा अमल वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एंड नंबर टू, आप ये फरमा रहे हैं कि ये जिम्मेदारी इंसान ने खुद बढ़कर ली है, तो इंसान को तख्लीक तो खुद अल्लाह ताला ने किया है, यकीनन अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक में कोई ऐसी चीज़ इनबिल्ट की होगी जिसकी वजह से इंसान ने यह चैलेंज कबूल किया है। मैं चाहूँगा इन दोनों पर अपना तबसरा कीजिए।
मैं आखिरी सवाल का जवाब पहले आपको दे देता हूँ। वो चीज़ क्या है? वो इरादा और इख्तियार है। यानी खालिक ये कहता है कि मैंने इंसान को बनाया इस तरह से है कि हदैना हुन नजदैन, मैंने दोनों रास्तों की हिदायत दे दी है उसको। और उसमें दीन और मजहब के बारे में भी ये कहा है कि इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।
ठीक है,
चाहे तो वो मेरा शुक्रगुजार होकर रहे और चाहे तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाए और मेरा इनकार कर दे। तो जिसने बनाया है उसने इख्तियार और इरादे की ये सलाहियत उसके अंदर वदियत कर दी है, वो अपने इख्तियार और इरादे को इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से ये पूरी तफसील सुनाई गई है कुरान मजीद में कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इब्तदा हुई तो तुम चीज़ों का शऊर नहीं रखते थे। तुम्हारे अंदर जो शख्सियत है वो शख्सियत इस जिस्म के साथ मुतल्लक होने में 14-15-20 साल ले लेती है। अच्छा। यानी देखिए ना, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है या आपके इल्म में है, इल्म में, और कुरान ने भी इसको बयान किया है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसकी वजाहत की है कि कमोबेश 120 दिन तक इंसान का हैवानी वजूद बनता है।
ठीक है,
अगर आप माजी में चले जाएं तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में भी कुरान मजीद ने यह बयान किया है कि पहले इंसान का हैवानी वजूद तख्लीक हुआ, वो कई मराहल से गुजरा, हज़ारों साल के मराहल से गुजरा, उसके बाद जाकर उसको ये शरफ अता हुआ कि अल्लाह ताला नफ्स इंसानी उसके अंदर डाल दें, यानी इंसानी शख्सियत उसको बदियत करें। अब भी जब माँ के पेट में हैवानी वजूद तख्लीक हो जाता है, हैवानी वजूद जिंदा होता है, जिस तरह हैवानात का वजूद जिंदा है, 120 दिन के बाद उसको इंसानी शख्सियत दी जाती है। ये इंसानी शख्सियत है जिसके मिलने के बाद वो इंसान कहलाने का मुस्तक होता है।
सही।
वो जो इंसानी शख्सियत हमें दी जाती है वो एक बाशूर शख्सियत है, वो एक पूरी शख्सियत है। लेकिन वो जब बच्चे को दी जाती है तो वो इंसानी दिमाग, यानी ये जो हमारा मादी वजूद है, जाहिर है इसमें जहाँ से ये सब चीज़ें सादिर होती हैं वो हमारा दिमाग है।
ठीक है,
इस दिमाग के साथ अपना रिलेशन पैदा करती है। ये रिलेशन पैदा करने में उसको वक्त लगता है, यानी पहले मरहले में जबिल्ली सा रिलेशन होता
है।
बच्चा माँ को पहचान लेगा, कुछ चीज़ों का इदराक करना शुरू कर देगा, कम से कम उसको ये मालूम हो जाएगा कि मुझे दूध कैसे पीना है, या छोटी मोटी अपनी ज़रूरियात को किसी ना किसी तरीके से जाहिर कर देगा। शुरू में इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, और आप ये देखिए कि इब्तिदा में उसका ये एहसास जिसको हम इंसान का एहसास कहते हैं ये भी डेवलप नहीं होता। मसलन उसको गलाजत में बिठा दें तो वो उससे कोई ख़ास कराहत नहीं महसूस करेगा।
ठीक।
अच्छा, इसी तरीके से जो अखलाकी शऊर है ये भी उसके अंदर मौजूद नहीं होता। वो किसी का गला घोंट दे, किसी को मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे उसको, जिस तरह के हैवानात को नहीं पड़ता। असल उसकी जमालियाती हिस्स भी अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई होती।
ठीक।
लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो जो दो बड़े खसायस हैं वो नमूदार होते हैं, एक उसकी जमालियाती हिस्स जिसको आप एस्थेटिक सेंस कहते हैं, और दूसरे उसकी मॉरल सेंस,
अखलाकी।
आपको भी बच्चे को देखिए, जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो हम क्या करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है अगर आप इसका मुताला करें। हम उसको दो लफ्ज़ सिखाते हैं, अच्छा और बुरा, दो चार चीज़ों पर उसका इतलाक कर देते हैं, यानी ये चीज़ अखलाकी लिहाज से अच्छी है,
ये बुरी है।
मसलन गाली देना बुरी बात है, सिखाना शुरू करते हैं ना, तो एक चीज़ पर हम उसका इतलाक कर देते हैं, ये जानवर की तरह या तोते की तरह यूं नहीं है कि जिस पे हमने इतलाक कर दिया बस वो उसी पर करेगा। आप हैरत अंगेज तरीके से देखते हैं कि वो आगे आगे इतलाक करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है,
यानी उसने अच्छा और बुरा दो लफ्ज सीख लिए, उसका इतलाक देख लिया, अब वो उसकी ममासिल चीजों पर खुद इतलाक करना शुरू कर देता है।
ठीक है,
फिर वो आपको बताना शुरू कर देता है थोड़ा सा 7-8 साल की उम्र में कि ये अच्छा ही बुरा है। यही मामला खूबसूरती और बदसूरती में होता है। शुरू में उसके लिए फूल ऐसे ही होता है कि जैसे अब आप बकरा लाएंगे तो हो सकता है आपके बाग में सारे फूल बर्बाद कर दें, बच्चा भी यही करता है, लेकिन फिर उसके अंदर जमालियाती एहसास डेवलप होना शुरू होता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो चीज़ों के बारे में, शुरू में आप उसे दो लफ्ज़ सिखाते हैं खूबसूरत बदसूरत, अब वो उसका इतलाक उसकी एप्लीकेशन शुरू कर देता है और थोड़े अरसे के बाद वो आपको बताना शुरू कर देता है कि बाबा ये सूट तो आपको अच्छा नहीं लग रहा।
ठीक, सही,
यानी ये सूरत हाल हो जाती है।
बिल्कुल सही।
तो इंसान के अंदर उसकी शख्सियत जो बातिन में है वो इस तरीके से उसके ज़ाहरी वजूद के साथ रिलेशन पैदा करती है, वो एक मुकम्मल शख्सियत है जो अंदर मौजूद है। आप ये समझें कि जिस तरीके से उसको कंडेंस कर दिया गया है तो वो बर्गो बार लाने में वक्त लेती है, गोया पूरा का पूरा दरख्त बीज के अंदर मौजूद है लेकिन उसको अपनी शाखें निकालने के लिए एक टाइम चाहिए, एक वक्त चाहिए।
ठीक,
ये पूरा इंसान है। इसमें जो ये दोनों वाक्यात कुरान ने बयान किए हैं तो ये इंसान की उस पूरी शख्सियत को पेश आए हैं। इसी तरह का एक दुनियावी वाक्या देखिए, वो भी पेश आता है इंसान को, वो माँ के पेट से जन्म लेता है। ये एक वाक्य है,
सही है,
इस वाक्य को हर आदमी जानता है जो माँ के पेट से पैदा होता है, लेकिन ये बताने के बाद वो इसको कबूल कर लेता है, इसकी याद उसके यहाँ नहीं मौजूद होती। दराहले के वाक्य तो उसके सामने हुआ,
वो इसलिए कबूल कर लेता है कि
नहीं, मैं कबूलियत पर बात नहीं कर रहा, कबूल क्यों करता है।
अच्छा, ठीक,
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ वाकया तो हुआ है ना।
ठीक है, ठीक,
यानी आप याद कराएंगे क्यों कबूल करता है ये एक अलग बहस।
ठीक,
असल सवाल यह कि वाकया हुआ है और वाकया उसके साथ हुआ है और उसकी याद महव कर दी गई है, तो इन दोनों वाकयात की याद भी महव कर दी गई है।
अच्छा,
इसलिए कि अगर ये याद बाकी रखी जाती तो फिर ये दुनिया इम्तहान के लिए नहीं बनाई जा सकती थी, फिर तो जाहिर है कि मामला खत्म हो जाता, जिसको कुरान कहता है ना कशफ हिजाब हो जाता, फिर आपको जरूरत ही ना पड़ती इसकी, कोई पैगंबर भेजा जाए फिर ये दुनिया और दुनिया होती, क्योंकि इसको इम्तहान के उसलूब पर बनाया
इसलिए महव कर दिया।
अच्छा, क्या हमारे यहाँ जो हमारे शऊर की चीजें हैं वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाती? अंदाजा कीजिए, आपको जवानी के जमाने में बहुत अशार याद किए होंगे, भूल जाते हैं ना?
भूल जाते, सही है,
अचानक याद आ जाते।
ठीक, ठीक है,
जब वो भूले हुए होते हैं तो मालूम होता है कि याद ही नहीं, कितने वाकयात हैं जो यही सूरत इख्तियार कर रहे हैं।
सही है।
जदीद माहिर नफ्सियात जो है उन्होंने जब इस पर काम किया तो उन्होंने महसूस किया और फिर नाम दिए उन्होंने, ये देखिए चीज किस तरीके से शऊर से तातु शऊर में जाती फिर लाशऊर में चली जाती। अच्छा, बाज़ औक़ात उसको आप बाहर ले आते हैं।
हाँ, ऐसा भी होता है।
यही चीज आपके ख्वाबों की सूरत में नमूदार हो जाती है। बाज़ औक़ात इतनी बईद बातें जो आपके शऊर की सतह पर नहीं होती वो आपके यहाँ तमसील की शक्ल इख्तियार करके नुमाया हो जाती हैं। तो दुनिया के अंदर भी कुछ वाकयात पेश आते हैं आपको जो शऊर के साथ पेश आते हैं वो लाशऊर में चले जाते हैं।
ठीक है,
इसी पर क्यास कर लीजिए कि वो एक शऊरी वाकया था जो पेश आया और जिस तरह से आप यहाँ चीजें फरामोश करते हैं ऐसे ही फरामोश कर दिया गया। अब जिस वक्त आपकी आंख आगे मौत के बाद खुलेगी मेरी और आपकी तो वहां वो फिर शऊर की सतह पर आ जाएगा।
और इसकी हिकमत ये है कि इम्तिहान लेना था, इसी ये
इम्तिहान लेने के लिए उसको महव कर दिया गया, तो ये ऐसे हुआ ये सारा।
ठीक, ये जावेद साहब, तवाहुम परस्ती को खत्म करने के लिए कि इंसान जो है वो कुरान की रोशनी में या वही की रोशनी में खड़ा हो।
तवाहुम परस्ती दुनिया की कदीम तरीन चीज है, यानी इंसान के पास अगर वही की रहनुमाई ना हो तो वो तवाहुम परस्ती होगी, इससे मुख्तलिफ हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। आप देखिए जो इस वक्त आपके यहाँ बड़ी मुतमद्दन दुनिया है, मैंने तजर्बतन देखा है कि जब तक उनको कोई वहम पेश नहीं आया होता वो उसी वक्त तक आकिल होते हैं, जब वो पेश आ जाता है वो खत्म हो जाता है। आपने देखा आपके सियासी रहनुमाओं में से बहुत से लोग कैसे तमाम प्रस्त होते हैं, किस किस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात उन्होंने कायम किए होते हैं, कैसे कभी कोई अम्मा जान और कोई बाबा जी उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं, वो कौम और मुल्क की तकदीर के फैसले बाज़ औक़ात छड़ी से मारने वालों के सुपुर्द कर रहे होते हैं, क्या चीज़ है। तो इस वजह से इंसान अगर अल्लाह ताला की किताब की रहनुमाई में ना खड़ा हो तो वो लाजमन तमाम प्रस्त हो जाता है। क्यों, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि इस दुनिया के अंदर तमाम मामलात खालिस अकली तरीके से पेश नहीं आते। यानी अगर मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ, आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, तो यहाँ बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके असबाब क्या थे, जिनके अवामिल क्या थे, वो क्यों पेश आए, कैसे हादसतन हमारे सामने आ गए, उनकी तौजीह नहीं हम कर पाते। और जब किसी चीज़ की आप तौजीह नहीं कर पाते तो आप कोशिश करते हैं कि फिर उसकी कोई माफ़ोकुल फितरत किस्म की तौजीह कबूल कर लें, जितना जी चाहे जोर लगा लें, आप कर ही लेंगे किसी ना किसी शक्ल में। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो किसी दूसरे मुल्क में जाकर कर लेंगे, एक डिसिप्लिन में नहीं करेंगे तो किसी दूसरे में कर लेंगे, अगर मजहबियात में नहीं करेंगे तो आम जिंदगी में कर लेंगे। उलूम फनून तक में बहुत सी चीज़ें इस नज़र आती हैं, तो ये रहेगा हमेशा। इसका तरीका क्या है, आप कैसे इंसान को इससे निजात दिला सकते हैं, वो ये है कि इंसान की अक्ल की तरबियत की जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे इल्म का माखज असल में है क्या। इल्म का माखज इंसान के अंदर है, इंसान के अंदर इस्तरारी तौर पर असल इल्म दे दिया गया है, वो इल्म है जो हुक्म लगाता है, उसके बाहर अशिया है, अशिया के साथ उस हुक्म का जब ताल्लुक पैदा होता है तो अक्ल काम करना शुरू कर देती है। तो उसे बताया जाए कि तुम्हारा इल्म काम कैसे करता है। दूसरे ये कि उसे ये बावर कराया जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें किसी सहरा में नहीं छोड़ दिया पैदा करके, आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही तुम्हारी तालीम का अहतमाम भी किया है, वो तालीम है जो इल्हामी सहीफ़ों में मौजूद है और उसकी मुस्तनद तरीन किताब कुरान मजीद, लिहाजा उसकी रोशनी में चीज़ों को देखना सीखो। ये दो चीज़ें जब आप डेवलप कर देते हैं, यानी अकली तरीके से चीज़ों का जायज़ा लेना और अकल को फिलवा के इस्तेमाल करना, तो तवाहम परस्ती आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए।
लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मुझे ये कहते हैं कि हमें मरने के बाद जिंदा होना है और मेरा एक खालिक है, तो एक शख्स ये भी कह सकता है कि ये भी तवाहम परस्ती है कि इस आपका कोई खालिक है और आपको मरने के बाद, आप तो मरने के बाद मलिया मेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये भी भाई तवाहम परस्ती है, ये ऐसे ही बस बता दी गई हैं चीज़ें, उस पर भी ये तलाक हो सकता है।
क्या क्या सकता है, बहुत से लोग कहते हैं, दुनिया में बहुत से हुकमा हैं, बहुत से फलसफी हैं जिन्होंने ये बात कह दी, तो आप उनके जवाब में क्या कहेंगे, इस्तदलाल करेंगे ना, अकली इस्तदलाल करके आप ये बताएंगे कि क्यों आपकी बात वहम नहीं है, इसके पीछे मजबूत अकली इस्तदलाल है। देखिए अकली इस्तदलाल हिस्सी नहीं होता लाजमन, ये ग्लास मेरे सामने पड़ा हुआ है इसके लिए इस्तदलाल की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ना आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब,
सही है
भाई, आफ्ताब के लिए तो सिर्फ बीना होना काफ़ी है, आप एक आदमी का हाथ पकड़े बाहर ले जाएं वो देख लेगा उसको। तो तजुर्बे और मुशाहदे में जो चीज़ें नहीं आती वहाँ अकली इस्तदलाल किया जाता है, अकली इस्तदलाल के जरिए से हम अवहाम का पर्दा भी चाक करते हैं और इसी तरीके से मजहबी अकायद पर भी इस्तदलाल करते हैं। चुनाचे कुरान मजीद को देखिए, क्या वो ये बात के क़यामत बरपा होनी है, ये बात के तुम्हारा एक खालिक है, ये महज आपसे तहक्कुम की बुनियाद पर मनवाता है। पूरे कुरान को पढ़ के देखिए, जगह जगह आर्गू कर रहा है, जगह जगह इस्तदलाल कर रहा है। तो जब इस्तदलाल किया जाता है तो चीज़ वहम से निकल के फिर सामने आ जाती है। अच्छा, क्या ये इस्तदलाल का तरीका हम बाकी उलूम में भी इख्तियार करेंगे, यानी वहाँ कुरान मजीद ने क्या किया है, कुरान मजीद ने ये किया है कि जो चीज़ें हमारे मुशाहदे में आती हैं उनसे इन्फर करना सिखाया है हमें।
सही है,
ऐसे ही है ना,
बिल्कुल ठीक,
यानी बिल्कुल इस कायनात के अंदर जो मौजूआत पाए जाते हैं उनमें से एक एक को लिया है खालिस साइंसी तरीके से, उनका तजिया करके ये बताया कि देखो ये कैसे काम कर रहे हैं, इनसे कैसे एक खालिक की हिकमत उसकी कुदरत नुमाया होती है, उसके बाद उस तसव्वुर को मुहकम किया है। इसी तरह क़यामत पर इस्तदलाल किया है तो बिल्कुल अकली इस्तदलाल किया है। तो जब आप मजहबी अकायद को अकली इस्तदलाल के बगैर महज तहक्कुम से पेश करेंगे तो माजरत के साथ वो भी तवाहम बन जाएंगे, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं होगी।
तवाहम परस्ती से ही एक सवाल मेरे जहन में आया है, स्पेशली शादियों के मामले में कहा जाता है कि इस महीने में शादी ना की जाए, इस महीने में निकाह किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, सफ़र आ रहा है तो इसमें बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं सफ़र में शादी जो है नहीं करनी चाहिए, और बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, और जो ऐसे सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो जिस चीज़ से मना करते हैं, जिस चीज़ का उन्हें वहम होता है वो चीज़ ऑटोमेटिकली उनके साथ हो जाती है, तो इसमें क्या हमारा अकल शऊर हमारा अकीदे पे बात आती है कि हम जैसा सोचते हैं जिस चीज़ पे हमारा अकीदा है वो चीज़ हो जाती है।
देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि इन सब तवहमात का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने इस तरह के तवहमात अरबों के यहाँ पाए जाते थे उनमें से एक एक की नफ़ी कर दी। ये सारी जितनी चीज़ें हैं इससे मिलती जुलती चीज़ें अरबों के यहाँ बहुत पाई जाती थी, आपने एक एक चीज़ के बारे में उसका नाम लेकर कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, और लोगों को तवहमात से निकाला, इस तरीके से तजुर्बे और मुशाहदे की तरफ रजू करने की दावत दी जिस पर आज जदीद साइंस की बुनियाद है। अच्छा, उससे आगे बढ़कर अकली इस्तदलाल करना सिखाया कि कैसे करना चाहिए, तो मजहबी हद तक तो ये चीज़ें बिल्कुल बेमानी है, कोई इसकी हकीकत नहीं। अब रह गई ये बात कि ऐसा क्यों होता है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ें महज वहम पर मबनी होती हैं वो, मिसाल के तौर पर मैं इन अवहाम को नहीं मानता, मेरे ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। मेरे वालिदे गिरामी बुज़ुर्ग शख्सियत थे, वो हमेशा ये कहते थे कि मंगल के दिन आदमी को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, और मैंने तय कर रखा था कि मंगल ही का दिन इसके लिए मौजूद। तो आदमी अगर ठीक जगह पे खड़ा हो और अपने खुदा पर उसको सच्चा एतमाद हो तो वो इन तवाहमात की खिलाफ वर्जी करके इनकी हकीकत बिल्कुल बातिल साबित कर देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आदमी तवाहम परस्त हो, अपनी ज़ात में कमज़ोर हो, ज़ईफ़ हो, तो असल में हमारी नफ्सियात खुद हमारे ऊपर असर अंदाज हो जाती है और हम अपनी नफ्सियात की कमज़ोरियों के खुद असीर हो जाते हैं। अच्छा, जब हम असीर हो जाते हैं तो हमारे अंदर मुशरिकाना एहसासात पैदा होते हैं चीज़ों के बारे में, कोई बुध के दिन के बारे में, कोई मंगल के दिन के बारे में, कोई बाल कटवाने के बारे में, कोई काली बिल्ली के रास्ता काट जाने के मामले में, ये पैदा हो जाते हैं। जब ये पैदा हो जाते हैं तो खुदा भी हमें इनके हवाले कर देता है। वो ये कहता है कि जाओ फिर, जब तुम इन्हीं को माबूद बना रहे हो तो फिर तुम्हारी इम्तहान और तुम्हारी आजमाइश के लिए मैं इन्हीं के असीर करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर डील दे दूंगा। तो उसका नतीजा ये निकलता है। तो आप अगर ठीक ईमान पर खड़े हो जाएं, अकली ज़िंदगी बसर करें, तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर आरा कायम करें, तो ये तमाम चीज़ें जितनी हैं इनकी हकीकत खुद आप बिल्कुल तोड़ कर फेंक देते हैं, कुछ भी नहीं होता।
लेकिन जावेद साहब, ये जो अभी आपने फरमाया, आपने कहा कि मंगल के दिन आपने तय कर लिया था,
बरसों मैं इमाम के साथ यही करता रहा।
ये बिल्कुल सही है। और जैसे आपने फरमाया कि जी फलां फलां महीनों में शादी जो है वो ठीक नहीं समझी जाती, आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनमें से कोई चीज़ भी जो है दीन के साथ मुताबिकत नहीं रखती। लेकिन जैसे कि हिंदुओं में कहा जाता है ना, शुभ मुहूर्त होती है, मुबारक घड़ी कोई होती है, हम देखते हैं कि मुबारक घड़ियों का तसव्वुर तो खैर इस्लाम देता है। आप पूरे हफ्ते के जो 7 दिन हैं उसमें सबसे मुबारक दिन जुमे का दिन करार दिया गया, यौम अरफा का दिन मुबारक करार दिया गया, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अय्याम मुबारक करार दिए गए। इसका मतलब इस्लाम में भी कुछ दिनों को, कुछ घड़ियों को मुबारक करार दिया गया है, जिसे शुभ मुहूर्त कहते हैं। तो यानी ऐसा है इस्लाम में, सिरे से तो इसका इनकार नहीं किया गया। कुछ अय्याम हैं ऐसे जिनको कि अल्लाह ताला कहता है ये बड़े मुबारक अय्याम हैं, बड़ी मुबारक घड़ियाँ हैं, ये इनको सिरे से हम इनकार तो नहीं कर सकते।
ये मुबारक और मुकद्दस, पहले इन अल्फाज को समझ लीजिए, बोले जाते हैं ना ये,
जी बिल्कुल,
ये मुकद्दस जगह है,
ठीक,
ये मुबारक दिन है,
ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पर फलस्तीन की जमीन के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लज़ी बारकना
हौला हु,
तो ये क्या चीज़ है? अल्लाह ताला जब किसी चीज को या किसी दिन को या किसी इलाके को अपने लिए खास कर लेते हैं,
ठीक है,
तो असल में अल्लाह ताला का ताल्लुक उसके साथ बरकत को वाबस्ता करता है। ये तो खालिस तौहीद हुई, इसके पीछे खुदा का अपना फैसला हुआ, उसने बता दिया,
ठीक है।
फलस्तीन के जमीन को अल अर्ज़ुल मुकद्दसा कहा गया,
सही,
क्यों? अल्लाह ने उस सरजमीन को अपने लिए खास करके ये कहा कि ये मेरी तौहीद का मरकज होगी और इसके जरिए से मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हम एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं और उस टुकड़े के बारे में तय करते हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे, तो अब वो मस्जिद होने की वजह से अल्लाह के साथ खास हो गई,
ठीक हो।
तो ये समझ लीजिए कि सारी बरकतें असल में ज़ाते खुदाबंदी से सादिर होती है, सारी तकदीस ज़ाते खुदाबंदी से सादिर होती है। ये चीज़ के ये किसी चीज़ में बिज़ात पाई जाती है, ये शिर्क है, और ये चीज़ अल्लाह ने वाबस्ता की है, ये तौहीद है। लेकिन अल्लाह ने वाबस्ता की है, आपके वहम पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए अल्लाह की सनद आपके पास होनी चाहिए।
अच्छा,
और वो सनद या आपको इलामी किताबों में मिलेगी या अल्लाह के पैगम्बरों के जरिए से मिलेगी, तो वहाँ तो किसी वहम का सवाल ही नहीं। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो बैतुल्ला है ये भी ऐसी ज़मीन है जिस तरह की बाकी ज़मीनें हैं, लेकिन मैंने इसको अपने लिए खास कर लिया,
ठीक,
ये मेरी इबादत का घर है। तो अल्लाह का उसके साथ ताल्लुक पैदा कर लेना, ये असल में उसको मुकद्दस या मुबारक बनाता है।
ठीक जी, आपका सवाल था जी।
सर, इत्तबा के लिए हम अक्सर सुनते हैं कि नो क्वेश्चन नो आर्गुमेंट के सरे तस्लीम हम है, इस तरह की कैफियत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो मकाम पे जो हम, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हुक्म है फ़त्ताबिउनी, दूसरा इत्तबा का तसव्वुर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस अब्द के पास कुछ सीखने के लिए अल्लाह के हुक्म से गए और वो तीन जो वाक़यात हैं वो जब हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया कि इस कश्ती में सुराख क्यों किया गया, इस बच्चे को क्यों मारा गया, तो वहाँ भी हमें इस तरह का तसव्वुर मिलता है कि मैं ये आप इत्तबा शायद नहीं कर सकेंगे और इत्तबा में क्वेश्चन नहीं होता, जबकि इस्लाम अकली इस्तदलाल और फहमो फरासत या सवाल करने की हौसला अफजाई करता है। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक़्त क्या हिकमत है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान इसकी क्या वजाहत करता है कि क्या इत्तबाए मुस्तफा इत्तबाए रसूल के लिए, या एक इसी से जुड़ा सवाल कि क्या वो ज़ात जिसकी इत्तबा का हुक्म दिया जाता है वो इतनी जामे शख्सियत होती है कि उसमें कोई नक्स तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, यानी उसका हर
क्वेश्चन क्लियर है जी कि इत्तेबा के इत्तेबा जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए या उसमें हम आर्ग्यू कर सकते हैं, इस्तदलाल कर सकते हैं। उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम वाले वाक़े की तरफ इशारा किया कि वहां पर वो क्वेश्चन करते थे तो उन्हें कहा जाता था कि आप इत्तेबा नहीं कर सकेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं करने दिया गया। तो इत्तेबा एब्सोल्यूट होनी चाहिए या उसमें क्वेश्चन भी हो सकता है?
ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। देखिए, बात यह है कि अल्लाह के पैगंबर जब आते हैं तो वो आकर सबसे पहले आपके साथ इस्तदलाल करते हैं। किस बात पे इस्तदलाल करते हैं? ये कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ।
ठीक,
ये बुनियादी बात आप इस्तदलाल ही से बांधते हैं। अभी कोई सवाल नहीं होता इत्तेबा का, कोई सवाल इताअत का नहीं होता। सवाल ये होता है कि आप क्या फिलवा के खुदा की तरफ से आए हैं। जब ये तय हो गया कि खुदा की तरफ से आए हैं तो अब आदमी दरमियान से निकल गया। अब असल में गुफ्ता है अल्लाह बहुत
ठीक,
यानी जब ये बता दिया गया कि वो आसमान से परवाना लेके आए हैं, आपके इल्म में है कि सहाबा किराम मुख्तलिफ मौकों पर रिसालत में आप से क्या पूछते थे? हुदैबिया में क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं इस वक्त, जो माहिदा लिख रहे हैं आप, इसके लिए कि अल्लाह की तरफ से पाबंद है, तो आपने फरमाया कि मामूर, मैं खुद हुक्म की पैरवी कर रहा हूँ। तो इस वजह से रसूल का मामला ये है कि अल्लाह उसको मुकर्रर करता है कि तुम मेरा मंशा, मेरी राय, मेरी बात लोगों तक पहुँचाओ, इस वजह से उसकी इत्तबा का हुक्म देता है।
ठीक,
यानी वहां असल में पहले हम इस्तदलाल से, आर्गुमेंट से ये मान लेते हैं कि ये खुदा का रसूल,
पहले हम तस्लीम कर लेते हैं उसकी रिसालत और नबूवत को। ठीक,
तो इसके बाद तो यही होगा ना, आपने एक बुनियादी मुकदमा मान लिया। और वहां पर भी आपको इससे नहीं रोका गया कि आप सवाल करें। सवाल से आबाए किराम ने इतने किए हैं कि कुरान मजीद भरा पड़ा है उससे। अच्छा, बाज़ चीज़ों की हिकमत पूछी है, बाज़ चीज़ों के बारे में ऐसा इस्तफसार किया है कि मैं उसकी मिसालें दूं तो आप हैरान रह जाएं। अच्छा, बाद मौकों पर यहां तक कह दिया है कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर ये आपका मशवरा है तो फिर हम मानने के लिए मुकल्लफ नहीं है,
और मतलब अगर ये हुक्म है, आपका हुक्म है या मशवरा है, सही।
तो इस वजह से ये सारी जितनी बात है ये कुरान में भी बयान हुई है, वहां भी बयान हुई है, इसको इस्तदलाल के मुकाबले में खड़ा कर देना तो किसी तरह भी ठीक नहीं है। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को पहले इल्म अकल के साथ पैगंबर माना है। जब मान लिया है तो क्या माना है? फलसफी माना है, हकीम माना है, अरिस्तु अफलातून माना है, खुदा का सफीर माना है। जब खुदा का सफीर मान लिया तो अब तो मुझे सर तस्लीम फमी करना है। अब मैं पहले सर झुकाऊंगा उसके बाद सवाल करूंगा।
ठीक,
पहले इम्तसाल अमर करूंगा उसके बाद हिकमत पूछूंगा, इसलिए कि यही अकल का तकाजा है। अकल कहती यही है कि मैंने माना क्या है, तस्लीम क्या किया है।
अच्छा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये का जो हवाला दिया, वहां पर उनको सवाल नहीं करने की इजाजत दी गई थी?
नहीं, देखिए वहां क्या है, वहाँ सवाल ये है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताने के लिए, बल्कि उनकी वसातत से हमें बताने के लिए कि इस दुनिया का निज़ाम क्या ऐसा है जिस तरह के फ़लसफ़ी हज़रात समझते हैं कि एक मुहर्रिक अव्वल है, एक इल्लतुल इलल है, उसने एक मरतबा तहरीक दे दी, यानी
और उसके बाद
समंदर के अंदर एक पत्थर फेंक दिया, उसके बाद लहरें आप से आप बढ़ती चली जा रही, क्या ऐसा हुआ है? या अल्लाह ताला बराए रास्त हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं और उसमें मुदाखलत करते हैं? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्दा उठा दिया गया।
ठीक है,
कि कारकुनाने कज़ा व कदर, खुदा के फरिश्ते कैसे काम कर रहे हैं, तो खुदा के एक फरिश्ते के साथ उनकी मुलाकात करा दी गई और उस फरिश्ते ने पहले मरहले में उनसे यह कहा कि देखिए, अगर आप सवाल जवाब करेंगे तो मैं फिर आपको अपने सफर में ले जा नहीं सकता।
सही,
आपको सिर्फ मुशाहिदा करना है। बिल्कुल ठीक, वहां इस्तदलाल का कोई सवाल नहीं, वहां तो आपको बुलाया इसलिए गया है कि इस कायनात के पीछे मामलात कैसे चल रहे हैं वो आपको दिखाया जाए। अब मैं आपको अपनी लेबोरेटरी में बुलाऊं और मैं ये कहूं कि मैं आपको कुछ तजुर्बात दिखाना चाहता हूं, आप ये कहेंगे तजुर्बा तो बाद में होगा, पहले मुझे कुछ सवालात कर रहे हैं। तो असल में बात यह है कि वहां सवाल जवाब का मंजिल नहीं है, या हम हर मौके के ऊपर उसको उठा के क्यों खड़ा कर देते हैं? जब मैं किसी चीज को समझने के लिए जाता हूं तो मेरा पहला काम उस चीज को सुनना, देखना, उसका मुशाहिदा करना, उसका डाटा मुरतब करना है। जब मैंने वो चीज हासिल कर ली, अब उसकी बुनियाद पर मैं इस्तेलाल करूंगा। तो ये दोनों चीजें जो है इनमें
अलग अलग
अलग अलग।
ठीक जी, आपका सवाल है।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमा दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फिरके में ना पड़ो। आज मुस्लिम उम्मा जिस तरह फिरकों में पड़ी है, एक साइड यूनिटी बना रही है एक फिरके की, दूसरी साइड दूसरे फिरके की यूनिटी बना रही है, तो क्या हम उस सूरत में, इसका मतलब बज़ाहर तो लगता है हमारे दौर में तो अल्लाह ताला का निज़ाम जो है पूरी दुनिया में जो है डोमिनेट नहीं हो सकता, बज़ाहर तो ये लगता है, کیونکہ مسلم امہ تو فرقے میں بڑی ہے.
اچھا آپ کا سوال جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ مسلم امہ فرقے میں بٹی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہ کہ اللہ کی یہ نظام جو ہے اسلام کا جو نظام ہے وہ پورا نافذ ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں جب فرقوں میں بٹی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے وہ نافذ تو نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دور میں نہیں ہوگا, پھر کب ہوگا؟
ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا.
نفس تو آپ کی ایجاد ہے, دین کی بات کرے نا,
دین
اللہ کا دین پوری طرح موجود ہے, کیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے؟ ہماری پوری ذاتی زندگی کے اندر میں آپ کو دسیوں انسان دکھاتا ہوں دین کا مجسم نمونہ ہوتے ہیں. پہلے یہ طے کر لیجیے دین ہے کیا, یعنی کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو خدا کے خوف سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے, بدکاری کے قریب نہیں جاتے, یہ کس کا دین ہے؟ جس کی
تو انفرادی حیثیت ہوئی نا, یعنی ایک اجتماعی نظم کی حیثیت سے تو دین نافذ نہیں ہے.
آپ کے خیال میں دین صرف اجتماعی نظم ہے؟ دین کے اندر اجتماعی زندگی سے متعلق چار احکام ہیں بس, باقی سارا دین جو ہے وہ مجھ سے متعلق ہے, فرد کی حیثیت سے, باپ کی حیثیت سے, کاروبار کرنے والے کی حیثیت سے. کیا اس دنیا کے اندر سارے لوگ ملاوٹ کرنے لگ گئے ہیں, سب لوگ غبن کرنے لگ گئے ہیں, سب لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں؟ اس میں سچائی پر قائم رہنے والے بھی موجود ہیں, اس میں امانت اور دیانت کا حق ادا کرنے والے بھی موجود ہیں, اس میں دیانتداری کے ساتھ معاملات کرنے والے بھی موجود ہیں, وہ خدائی کے حکم پر کر رہے ہیں. یہ اس پورے خطے کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے جو حرام جانوروں کے قریب نہیں جاتی, کس کا حکم ہے؟ میں آپ کو ایسے دسیوں لوگ بھی دکھاتا ہوں, سارے یورپ میں پھر کے آ جائیں گے اور بعض موقع کے اوپر انہوں نے کسی یعنی دال روٹی پر گزارا کر لیا ہوگا, کس کا دین ہے؟ تو اس وجہ سے پہلے اپنے تصورات بدلیے, دین صرف چند سیاسی احکام کا نام نہیں ہے, دین اصل میں آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور اس لحاظ سے پوری کامیابی کے ساتھ ہزاروں انسان اس پر عمل کر رہے ہیں آج بھی.
سوال میرا درمیان رہ گیا تھا, اصل سوال کچھ اس طرح تھا کہ میں ڈومیننس کی بات کی تھی, اسلام کیا اس وقت دنیا میں ڈومیننٹ ہے؟ اسلام مطلب اس حوالے سے کہ امریکہ کا جب چیز آتا ہے جس مسلم کنٹری پہ چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور باقی اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وقت کب آئے گا جب غیر مسلم طاقتیں, غیر اسلامی طاقتیں, غیر دینی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے زیر اطاعت ہوں گی اسلام کے؟
دیکھیے یہ جو دنیا کے اندر سیاسی غلبہ ہے اس کا تعلق کچھ قوانین سے ہے, ان قوانین کی پابندی آپ کریں گے آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا, کوئی دوسرا کرے گا وہ اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاگ قانون ہے جس کے مطابق یہ ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہ ایک سائنسی قانون ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, جس طرح سے یہ سائنسی قانون ہے جس کو آپ دریافت کر لیتے ہیں, وہ ہندو کر لے, وہ مسلمان کر لے, جہاز اڑانے کے قابل ہو جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے قوموں کے عروج و زوال کے بھی قوانین ہیں. تو اس دنیا کے اندر وہ عروج و زوال کس اصول پر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ قانون یہ ہے کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے جو قوم برتر ہوگی وہ دنیا پر حکومت کرے گی. یہ چیز آپ حاصل کر لیں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی, یہ جن کو اس وقت حاصل ہے وہ حکومت کر رہا ہے.
اچھا سر ایک کوشچن ہے میرا کہ ایک سوال ہے جہاں پہ عقل آ کے تھوڑا سا زبزب کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ سے دوسرے بندے کا قتل ہو جائے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا قتل لکھا تھا, کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں واقعہ کہتے اس کے نصیب میں ایسا لکھا تھا, تو اگر وہ چیز اگر اللہ پاک نے انسان کے تقدیر لکھ دی گئی ہے اور اگر یہ کیا وہیں سے لکھا گیا ہے کہ اس بندے نے اس کے ہاتھ, کیونکہ موت کا وقت, موت کی جگہ اور موت کی وجہ مقرر ہے کہ کس نے کیسے مرنا ہے, اور اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا یہ لکھا جا چکا ہے پہلے سے یا یہاں انسان کی عقل اور شعور کی بات آتی ہے؟
موت کا وقت تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, اس کا سبب کون بنے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر اس کا سبب بن جائے, تو وہ جامد ہے. آپ کو ٹھوکر لگی, مجھے ٹھوکر لگی, گر گئے, سر کے بل گرے, رخصت ہو گئے دنیا سے, ایسا ہوتا ہے نا بارہا. تو آپ کیا کہیں گے کہ پتھر کو سزا دی جائے؟ پتھر ارادہ و اختیار نہیں رکھتا, لیکن اگر کوئی انسان آگے بڑھ کے اس وقت قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے تو یہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے, اس وجہ سے یہ مسئول ہوگا, جواب دہ ہوگا اس کے لیے. اور یہ جو اس آدمی کا یہ عمل جو ہے یہ اس نے اپنے ارادے سے کیا, اپنے اختیار سے کیا, اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا. یہ جو اس طرح کی تعبیرات ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, یہ ہوا ہے لوگوں کی زبان ہے. جو آپ کا اخلاقی وجود ہے اس کو غلط استعمال کر کے میں یا آپ قتل کا ارتکاب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, یہ میں اپنے ارادہ اختیار سے کرتا ہوں, لیکن میں یہ کروں گا یہ خدا کے علم میں ہوتا ہے. تو وہ خدا کا علم اور چیز ہے, اور مجھے کوئی مشین میرے اندر رکھ کے پابند کر دینا ایسا نہیں کیا گیا. وہ بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مجھ پر یہ تہمت نہ لگاؤ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, اور میں صرف ان معاملات میں پوچھوں گا جن میں میں نے اختیار دیا ہے, اور جب میں پوچھوں گا تو تمہارے اعضاء, تمہارا جسم, تمہارا باطن گواہی دے گا کہ ہم نے یہ کام اپنے ارادے سے کیا ہے, ہم سے کسی نے بالجبر نہیں کرایا.
ٹھیک,
تب سزا.
آپ کا سوال جی.
میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر پہنچ کر وہ دو چیزوں کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا, اپنے آپ کو بے بس تصور کرتا اس وقت, اور اس وقت جو لوگ استخارہ کرنے کا کہتے ہیں, تو اس استخارے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کیا رستہ ہے استخارہ کروانے کے علاوہ, جب انسان اپنے آپ کو, جب انسان کی عقل اس وقت بے بس ہو جاتی ہے, تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا.
استخارہ کیا ہے جاوید صاحب؟
پہلے تو ایک اصولی بات سمجھ لیجیے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل دی ہے, اور ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ میں نے تمہیں چونکہ عالم اسباب میں بھیجا ہے تو اپنی عقل کو بھی استعمال کرو, اپنے علم کو بھی استعمال کرو. علم و عقل کا استعمال پوری دیانتداری کے ساتھ ہونا چاہیے. علم و عقل کے جو ذرائع ہم کو میسر ہیں ان میں اگر کسی موقع پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے, آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. یہ نہ صرف یہ کہ ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے. یعنی علم میں, تحقیق میں, عملی معاملات میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جن میں علمی اور عقلی لحاظ سے کوئی آخری نتیجہ نکالنا آسان نہیں ہوتا, یا دو راہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, اس میں انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں. استخارہ کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پیغمبر اسی لیے آتے ہیں, بہت سی دعاؤں کی ہم کو تعلیم دی. اگر آپ کبھی دیکھیں حدیث کی کتابوں میں تو پورا پورا باب ہے کتاب الدعوات کا, جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں. میں نے خود اسلام پر جو میری کتاب ہے میزان کے نام سے, اس میں جو دعائیں سند کے اعتبار سے نسبت کا حق رکھتی تھیں وہ سب جمع کر دی, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت دعائیں, یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کسی پیغمبر ہی کی زبان سے نکل سکتی ہیں. تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. استخارہ کا مطلب عربی زبان میں اللہ سے خیر چاہنا, اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اس کو لوگوں نے کوئی جنتر منتر بنا لیا ہے, اس کے ساتھ خواب وابستہ کر دیے ہیں, اس کے بعد اب یہ کاروبار بن گیا ہے, اب ٹیلی فون پر بھی ہونے لگ گیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ تو اللہ کے دین کو تماشا بنا رہا ہے. استخارہ کچھ نہیں, یہ خدا کے حضور میں دعا ہے. تو جس طرح ہم باقی دعائیں کرتے ہیں اسی طرح یہ دعا بھی کرتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ جس طرح باقی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. جب قبول کر لیتے ہیں تو رہنمائی کے ہزار ذریعے بھی پیدا کر دیتے ہیں, یعنی عقلی اطمینان ہو جائے گا, کوئی علمی پہلو سامنے آ جائے گا, کوئی دوسرا آدمی آ کے مطمئن کر دے گا, ہمارے سوال کا جواب مل جائے گا. اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی خواب میں رہنمائی ہو جائے, ایک صورت یہ بھی ہو سکتی.
ٹھیک,
اور یہ باقی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کو آپ نے ایک مخصوص صورت بنا لیا کہ فلاں آدمی. اچھا, پھر یہی نہیں, یہ دعا ہم کو سکھائی گئی تھی کہ تم اس دعا کو خود کرو. یعنی وہ دعا کبھی پڑھی ہے آپ نکال کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار, میں تیری عزت کو, تیرے علم کو, تیری قدرت کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے, اس میں میری رہنمائی فرما اور میرے لیے اس میں سے خیر کا پہلو نمایاں کر دے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو نہ ہم سمجھتے نہ جانتے ہیں, اور ہم کسی دوسرے آدمی کہتے میرے لیے ذرا استخارہ کر دیجیے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود آپ پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, خود وہ دعا کریں, اردو میں کریں بے شک, عربی میں کریں, اس کا مطلب سمجھ کے کریں. خدا ساری زبانیں سمجھتا ہے. تو جب آپ وہ دعا کریں گے تو آپ کسی بزرگ سے یا کسی اور اچھے آدمی سے کہتے ہیں آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا, جیسے ہم ویسے کہتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ آپ کو اگلے دن بتا دیتے ہیں, بلکہ اب تو اگلے گھنٹے بتا دیتے ہیں,
پلک جھپکتے بتا دیتے ہیں, فوراً بتا دیتے ہیں,
صورتحال یہ بن گئی. تو یہ تو محض ایک جو سمجھ لیجیے کہ دین کو تماشا بنانا ہے, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت.
جی, کیا کوئسچن آپ کا؟
اچھا سر, ایک کوئسچن ہے, اس سوال کو گستاخانہ نہ لیا جائے, معصومانہ اور اصلاح کی غرض سے رہنمائی کیجیے گا میری, کیونکہ بہت سے سوال انسانی عقل میں آتے ہیں اور بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات نہیں مل رہے ہوتے, تو ایسی محفلیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انسان کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے, ہر انسان کی شارق. تو میرے عقل میں یہ سوال نہیں آتا کہ انڈیویجولی ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں, تو اللہ پاک ہر ایک شخص کی شارق کے قریب کیسے ہوگا؟ اللہ پاک کا وجود وہ تو ایک نور ہے, وہ ہر ایک شخص کے پاس انڈیویجولی کیسے موجود ہوں گے اگر ان کا وجود ہو؟ مینس آگے آپ اس میں رہنمائی کیجیے.
اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ان کا علم ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں جانتے. اللہ کی ذات اگر ہماری گرفت میں آ جائے تو پھر خالق ہم ہوں گے, پھر وہ مخلوق بن جائے گا. تو اللہ کی ذات تو ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے, لیکن اللہ کا علم ہمارے قریب ہے, یعنی شارق سے قریب. یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ تم منہ سے بول رہے ہو, جو کام تم کر رہے ہو, وہ خدا کے براہ راست علم میں ہوتا ہے. تو میں صرف تشبیہ دے کے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے, 100-200 سال پہلے, کتنی چیزیں تھیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آتی تھی. یہ تصور میں آتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں گا اور یہ امریکہ میں سنی جا رہی ہوں گی. تو اس وقت تو انسانی علم نے یہ حیثیت اختیار کر لی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال کرتی ہیں, جو اس کائنات کا خالق
خالق و مالک ہے, بے شک مالک.
تو اس وجہ سے اسی پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ خدا کا علم ہمارا احاطہ کیے ہوئے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری طرح کی آنکھوں کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہ اصل میں ہم اپنے تصور کے لحاظ سے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہم پر نگران ہے, وہ ہمارا مشاہدہ کر رہا ہے, ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسی کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے بیان کیا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یعنی دیکھیں نا, اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ یا زمان کے کی پابند ہے, ٹائم کی, یا مکان کی پابند ہے, سپیس کی. یعنی میں انسان کی حیثیت سے اس وقت موجود ہوں, یہ ضروری نہیں کہ میں ماضی میں بھی ہوں, ضروری نہیں میں مستقبل میں بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ میں زمان اور مکان, ٹائم اور سپیس دونوں کی محدودیتوں سے بالا تر ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کسی چیز کو تم تصور کرو, ایسا نہیں ہے کہ میرے بعد بھی کسی چیز کو تصور کرو, ایسا نہیں کہ میرے اوپر کسی چیز کو تصور کرو, ایسا نہیں کہ میرے نیچے کسی چیز کو تصور کرو. تو اس کا مطلب ہے نہ وہ زمان میں پابند ہے نہ مکان میں پابند ہے. جب وہ زمان اور مکان میں پابند نہیں ہے تو وہ آپ کی شارق کے قریب بھی زمان اور مکان, ٹائم اور سپیس کے لحاظ سے نہیں ہے, بلکہ اپنی اسی شخصیت کے لحاظ سے جو اس کے شاعر شان.
ٹھیک جی, آپ کا سوال ہے جی.
میرا سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ کیا تعلیمی میدان میں ہم باقی قوام کے مقابلے میں برابر ہیں یا پیچھے ہی جا رہے ہیں؟
آخری درجے میں پیچھے ہیں. اصل میں ہم علم کے لحاظ سے پچھڑ چکے ہیں. دنیا میں پچھلے 500 سال سے ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے غلبے کے خواب دیکھ رہا ہے. اچھا دیکھیے, اس میں بھی ہم کس قومیت پہ اپنے آپ کو ڈال چکے ہوئے ہیں. ہم عرب تھے, عجم بھی تھے, ترک بھی تھے. سوال یہ کہ اسلام کسی قوم کا مذہب ہے؟ آپ اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو جائیے دنیا کے اندر جن قوموں کو غلبہ حاصل ہے, انہیں خدا کے دین کی دعوت دیجیے.
صحیح,
یہ اسپرٹ نکل چکی ہے ہمارے اندر سے. یعنی سوائے اس کے کہ ایک قوم کے سیاسی غلبے کے, اس کے علاوہ ہم سوچتے ہی کچھ نہیں. تو دنیا کے اندر خدا کے بیلاگ فیصلے ہو رہے ہیں. علمی لحاظ سے پیچھے ہو جانے کے بعد اب آپ خوابوں کے ذریعے سے دنیا پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو اسی میدان میں اپنی مہارت ثابت کرنی ہے, اور یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے. یہ خواہش سے نہیں پیدا ہو.
شعور اور خواب کا کوئی تعلق ہے جاوید صاحب؟
یہ اس طرح تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے شعور کی سطح پر موجود ہوتی ہیں, وہ جب ہمارے اندر باطن سے رابطہ پیدا کرتی ہیں, تو وہی بعض اوقات سوتے میں تمثیل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یعنی ہمارے نفس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈرامیٹائز کر دیتا ہے, ممثل کر کے دکھا دیتا ہے. اس کی بڑی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی جسمانی ضروریات ہے, ان کے لحاظ سے کوئی چیز آپ کی حاجت بن گئی ہے.
ٹھیک,
مثال کے طور پر اس کا زور جب اندر سے آپ پر پڑتا ہے تو وہی خواب میں ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے جن چیزوں سے آپ کا زیادہ اشتغال ہوتا ہے, زیادہ ان سے آپ متعلق ہوتے ہیں, وہ آپ کے شعور کی سطح پر اکثر رہتی ہیں, وہی اصل میں آپ کی خواہش اور آپ کے جذبے کے ساتھ مل کر ایک ڈرامے یا تمثیل کی صورت میں رات کو آپ کا خواب بن جاتی ہے. تو یہ تعلق اپنی جگہ موجود ہے. میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ اتنا خوبصورت میڈیم ہے جو ہمارے اندر ہے, کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں, اور اس کو جنات بھی جب وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں.
آپ ہی دے دیں لاسٹ کوئسچن. اگر
بات ہوئی تھی اسلامی ابتدائی اسلامی دور میں, وہاں جتنے بھی جگہ تھے صوبے تھے, سارے مسلم صوبے تھے,
ریاستیں
مطلب انہیں صوبے کا نام دیا گیا تھا, علیحدہ ملک کا نام یا علیحدہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی, وہ گورنر ہوتا تھا جو کہ خلیفہ کے انڈر ہوتا تھا.
ٹھیک,
اس وقت میں اور اب کی حکومتوں میں کیا اب کی حکومتیں جو ہیں وہ اس کے مطابق ہیں, اسلامی قانون کے مطابق ہیں یا وہ ویسے ہی بائی چانس ایولیوشن کے ذریعے یہی ہونا تھا اور اسلام میں اس کی اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ میرا یہ کوئی
اس وقت جو قومی ریاستیں ہیں کیا وہ اسلام کے مطابق ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے.
اسلام کے خلاف نہیں, اسلام نے کوئی پابند نہیں کیا اس کا. آپ کے علم میں ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا ہی عرصہ بعد دو حکومتیں قائم ہو گئیں. یعنی ایک لمبے عرصے تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت الگ قائم تھی, حضرت علی کی حکومت الگ قائم تھی. اس کے بعد بھی آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت الگ قائم تھی, ان کی حکومت الگ قائم تھی. اچھا, بنو امیہ کی حکومت 94 ہجری میں غالباً ختم ہوئی ہے, اور اس کے فوراً بعد عباسیوں کی جو حکومت قائم ہوئی تو ادھر اندلس میں جا کے امیوں نے خود اپنی حکومت قائم کر لی. تو اس لیے وہ چند سال تھے جن میں مسلمانوں کی حکومت ایک ہی تھی, چند سال تھے. تو یہ تو دنیا کے اندر کا سیاسی عمل ہے جو چل رہا ہے. آپ میں خواہش کر سکتے ہیں کہ سارے مسلمان ملکوں کو ایک ملک کی حیثیت مل جائے, ہم خواہش کر سکتے ہیں ساری دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جائے, اچھی خواہشیں ہیں, لیکن اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا. حالات کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حکومت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 حکومت.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے یقیناً یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس اور بھی بہت سارے سوالات ہوں گے, اگلے کسی پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کریں گے. اور ناظرین, آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آئے ہوں گے, یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا, ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور اگلے کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے ساتھ آپ کے ان سوالات کو ضرور رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.